الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ العظیم. معزز بھائیو دوستو اور بزرگو, اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ویسے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق پیدا فرمائی ہے, کیڑے مکوڑوں, جانوروں, درختوں, پانی وغیرہ وغیرہ کی شکل میں, لیکن ان ساری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قیمتی بنایا ہے, خوبصورت بھی بنایا ہے, قیمتی بھی بنایا ہے اور مکرم بھی بنایا ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے امپورٹنس کو ہمیشہ مد نظر رکھے, اپنی ویلیو کو مستحضر رکھے, میں کون ہوں اور کتنا قیمتی ہوں یہ اس کی نظر میں رہے. اس لیے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھائی ہیں انسان کی قیمت کو سمجھانے کے لیے. والتین, انجیر کی قسم. والزیتون, زیتون کی قسم. وطور سینین, اور طور سینا کی قسم. وہاد البلد الامین, اور مکہ مکرمہ کی قسم. دو چیزوں کا تعلق مادیات سے ہے اور دو چیزوں کا تعلق معنویات سے ہے. اب آپ بولو گے یہ مادیات معنویات یہ کون سے کیپسول کے نام ہیں, لیکن اب زبان پر آ گیا تو میں کیا کروں, سمجھا بھی رہا ہوں. یہ کھانے پینے کی چیزیں, سمجھ میں آنے والی چیزیں, دکھنے والی, سنی جانے والی, چکھی جانے والی, یہ سب مادیات ہیں. تو انجیر تو کھایا جاتا ہے, زیتون بھی کھایا جاتا ہے, لیکن طور سینین اور مکہ مکرمہ یہ کتنے فائدے کی چیزیں ہیں وہ دکھتا نہیں ہے, سمجھا جا سکتا ہے. زیتون تو سمجھ میں بھی آتا ہے, نظر بھی آتا ہے, اور انجیر بھی دکھتا ہے, لیکن کعبہ دکھنے میں تو ایک مکان ہے, چار دیواروں کے اندر پیک ایک مکان ہے, لیکن اس میں کیا چیز رکھی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ تو وحی کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے, نبیوں کے بتلانے سے سمجھ میں آتا ہے. طور سینین کا بھی یہی مطلب ہے. انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں, مادیات کی بھی اور معنویات کی بھی. بقول بعض مفسرین کرام کے بہت قیمتی بات لکھی کہ یہ جو انسان ہڈیوں, گوشت اور پوست کا ایک لوتھڑا نظر آتا ہے, وہ دکھنے میں ایک انسان ہے, حقیقت میں وہ پوری مخلوق کا مجموعہ ہے، سمجھو اس بات کو. یہ انسان ایک انسان نظر آتا ہے لیکن وہ پوری دنیا اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. انسان ایک انسان کے اندر پہاڑ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، ندیاں نالے بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، اور مختلف قسم کے نمونے ہیں. ہڈیاں پہاڑ ہیں، ہاں انسان کے اندر جو ہڈیاں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا نمونہ بنایا ہے. پہاڑوں میں سے کیا نکلتی ہے؟ ندیاں. ندیاں پہاڑوں میں سے ہی نکلتی ہیں نا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں سے نہریں پھوٹتی ہیں، ہمالیہ کے پہاڑ میں سے بڑی بڑی ندیاں پھوٹتی ہیں، بڑی بڑی چٹانوں میں سے چشمے اور ندیاں پھوٹتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہڈیوں کی شکل میں پہاڑ پیدا فرمائے، اس میں سے خون کی ندیاں پھوٹتی ہیں، خون کی ندیاں پھوٹتی ہیں، پت کی ندیاں پھوٹتی ہیں، پانی کی ندیاں پھوٹتی ہیں. اب جب یہ ندیاں دنیا میں پہاڑوں میں سے نکلتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سو مینی کائنڈس آف ریورس، سو مینی ٹیسٹ آف واٹر، مختلف قسم کا پانی، مختلف ذائقہ. بعض ندیوں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اسپرنگ واٹر، میٹھا ہلکا پھلکا. بعض ندیوں کا پانی کھارا ہوتا ہے اور بعض ندیوں کا پانی کڑوا ہوتا ہے. انسان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کی ندیاں بہائیں. یہ آنسوؤں میں سے جو ندی بہتی ہے آنکھوں میں سے، اس کا پانی کھارا، اور یہاں سے جو پانی نکلتا ہے لعاب کی شکل میں وہ میٹھا. اور سمجھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ندیوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، کہ دنیا میں درمیان میں واٹس ایپ پر پھرتی تھی وہ ویڈیو، اور یوٹیوب وغیرہ پر بھی ہے، کہ وہ جگہ انسانوں نے تلاش کر لی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہی سمندر ہے لیکن ادھر والا حصہ میٹھے پانی کا ہے، ادھر والا حصہ کھارے پانی کا ہے. لیکن مجال ہے کہ میٹھے پانی والا حصہ ادھر آ جائے، حالانکہ سمندر تو ٹھاٹھے مارتا ہے، سمندر تو طوفان پر اترتا ہے. سمندر کی موجوں کو آپ نے دیکھا ہو تو وہ کتنے طوفان مچاتی ہیں کہ ادھر کی مچھلیاں ادھر پھینک دیتی ہیں اور ادھر کی مچھلیاں ادھر پھینک دیتی ہیں. لیکن کیا خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ہی جگہ، بیچ میں ہماری نظروں کے اعتبار سے کوئی پارٹیشن بھی نہیں ہے، لیکن ادھر سے میٹھا پانی اپنی رفتار سے بہ رہا ہے اور ادھر سے کھارا پانی بہ رہا ہے. نہ یہ پانی ادھر جا سکتا ہے نہ وہ پانی ادھر آ سکتا ہے. اس کا نمونہ انسان کے چہرے میں بھی ہے کہ مرج البحرین ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ھذا کہ یہ منہ میں سے نکلنے والا پانی لعاب تھوک میٹھا میٹھا، اس کو آدمی نگل بھی جاتا ہے، اس کو اتار بھی جاتا ہے، اور ادھر سے نکلنے والا کھارا، اور ان دو کے بیچ میں اتنا پارٹیشن ہے، یہ پانی ادھر کبھی نہیں اترتا اور یہ پانی ادھر کبھی نہیں جاتا. دیکھا آپ نے کبھی کہ آنسو ادھر اترتے ہوں؟ کبھی نہیں. مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کبھی محسوس ہوتا ہو، تو ہم نے تو کبھی زندگی میں تجربہ نہیں کیا. 45 years old میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ آنسو ادھر اترتے ہوں. بولنے کے لیے اردو میں بولتے ہیں کہ آنسو پی گیا. ارے کیا پی گیا؟ پی گیا تو یہ کھارا کیسے اترا اندر سے؟ مطلب وہ تو ایک تعبیر ہے اردو کی کہ میں نے اپنے آپ پر صبر کر لیا، باقی یہ پانی ادھر اترتا نہیں اور یہ پانی ادھر جاتا نہیں. تو دیکھو یہ دو قسم کی نہریں تو ادھر ہی ہیں. جہاں تک کڑوے پانی کی شکل ہے تو وہ پت میں ہے، پت. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر پتا پھٹ گیا تو آدمی مر جاتا ہے. ہاں پتے میں کڑوا پانی. مختلف قسم کے نمونے ہیں، مختلف قسم کے، اور بلڈ بھی انسانوں کا الگ الگ ہے. پہاڑ بھی ہو گئے، नदियां भी हो गई। बालों की शक्लों में अल्लाह ने इंसान के जिस्म के अंदर जंगल पैदा कर दिया, दरख्त पैदा कर दिए। अब आओ, जंगल में बास दरख्त ऐसे होते हैं जिनका रहने देना ही जीनत है, उनको अगर आप काटो तो शक्ल बिगड़ जाएगी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा दरख्त है कि इसको काटा नहीं जाएगा, वरना मर्द औरत लगेगा। एक लतीफा सुनाऊं, कुछ लड़कियां बैठी हुई थी एक जगह पर, लड़कियां बैठी हुई थी, उतने में वहां से कुछ क्लीन शेव लड़के गुजरे। उन लड़कियों ने उनको देखकर कोई पर्दा भी नहीं किया और कुछ अपने आप को संभाला भी नहीं और केयरफुल भी नहीं हुई, नॉर्मल वो गुजर गए वो लड़के। उसके बाद एक जमात गश्त में आई, वो जमात माशाल्लाह थी। अल्लाह ताला हमारे दावत तबलीग के काम को बे इंतहा कबूल फरमाए, उसको तकवीयत बख्शे और उसकी हिफाजत फरमाए। वो जमात वाले सब दाढ़ी वाले थे, इनको देखकर वो लड़कियों ने पर्दा कर लिया, ऐसे चेहरा ढांप लिया और ऐसे नीचे देखने लगी। वो जो नौजवान थे ना, जिनको देखकर ये लड़कियों ने कुछ केयर नहीं लिया था, वो दूर खड़े खड़े ये सब हरकतें लड़कियों की देख रहे थे। जमात गुजर गई तो वो लड़के आए इन लड़कियों को छेड़ने के लिए, नऊज़ बिल्ला, और कहने लगे कि हाउ वंडरफुल यू आर, तुम अजीब किस्म की औरतें हो कि हमको देखकर तो तुम्हें पर्दा करना चाहिए था, इसलिए कि हमारे चेहरों पर दाढ़ी नहीं है तो तुम्हें समझना चाहिए कि ये बदमाश किस्म के लोग होंगे, और ये बेचारे सेफ लोग हैं दावत तबलीग वाले, ये तुम्हें छेड़ने वाले नहीं थे तो तुमने उनसे पर्दा किया, यानी उल्टी गंगा बहाई। जिन्हें देखकर पर्दा करना चाहिए उन्हें देखकर नहीं किया। और तो कहा कि तुम लोग यहां से गुजरे, तुम मर्द थे क्या? पर्दा तो मर्दों से किया जाता है, हमको तो ऐसा लगा कि औरतें गुजरी। कहा तुमको कैसे लगा औरतें गुजरी? कहा तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां ही नहीं है तो हम तो समझे कुछ लड़कियां होंगी और उन्होंने टी शर्ट और पैंट पहना होगा। ये हाल है। मुझे याद आया कि फरिश्ते तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान मन ज़य्यन अर्रिजाल बिल्लुहा व ज़य्यन अन्निसा बिज़वाइबी, के पाक है वो जात जिसने मर्दों को दाढ़ियों से जीनत बख्शी। पता चला कि दाढ़ी इंसान की जीनत और डेकोरेशन है, उसके जरिए उसकी मर्दानगी जाहिर होती है। और नहीं समझते हो तो और एक दलील के जरिए समझाऊं। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकात शरीफ की शरह में लिखा है कि जन्नत में उन मर्दों को जिनके चेहरों पर पैदाइशी तौर पर दाढ़ियां नहीं उगी, अल्लाह जन्नत में उनके चेहरों को भी दाढ़ियों से नवाजेगा, इसलिए कि बगैर दाढ़ी के नेमत पूरी नहीं होती, नेमत अधूरी रहती है। पता चला ये नेमत है, और रोजाना इस नेमत को काटते रहना बहुत गलत बात है, नाकदरी हो रही है। लेकिन शकर तुम लअजीदन्नकुम, खाली पैसों के साथ नहीं है, खाली पैसों ही के साथ शुक्र का ताल्लुक नहीं, शुक्र का ताल्लुक तमाम नेमतों के साथ है। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते रहने देने पड़ते हैं, अगर उसको काटोगे तो बुरा लगेगा, लेकिन बगल के नीचे के बाल, शर्मगाह के बाल, ये वो दरख्त हैं कि अगर इनको रहने दिया जाए तो अंदर जहर फैलता है, पसीने का, मैल का, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, नजासत का, तहारत का, पाकी नापाकी का मसला आता है। जैसे जंगल में बहुत से दरख्त ऐसे होते हैं कि उन्हें काट दिया जाता है। तो देखो, इंसान के बदन में पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, दरख्त भी हैं, और मुख्तलिफ किस्म की नदियां हैं, जानवर भी है इंसान के बदन में, जम्स। और कुछ जानवरों का जंगल में रहना यह जंगल की हिफाजत का जरिया होता है, और कुछ जानवरों का जंगल में रहना यह नुकसान होता है। वैसे ही इंसान के बदन में कुछ जानवरों का रहना जरूरी है। यह दही जो आप खाते हैं ना, वो अंदर जम्स ही तो लेते हैं आप, बैक्टीरिया। एक तरफ तो बोलते हैं बैक्टीरिया हो गए निकालो, और दूसरी तरफ दही पर दही पीते जा रहे। गुज़श्ता कल फजर के बाद मदीना मस्जिद में बयान था, अब मैं जब वहां से निकला कहीं नाश्ता करने जा रहा था तो एक साहब ने कहा आप ये दही जरूर ले जाइए और इसको खाइए, इसलिए कि योगर्ट से हेल्थ बनती है। मुझे मालूम है कि योगर्ट बिगड़े हुए दूध को कहते हैं सीधी सादी लैंग्वेज में, सीधी सादी लैंग्वेज में। अब जरा थोड़ा सा उसको बनाओ तो ठीक है। बाकी हिंदुस्तान में हमारे यहां औरतें जब दही बनाना होता है ज्यादा तो वो बोलती है भाई दूध लेकर आओ। अभी हमारे दोस्त के यहाँ शादी थी तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि भाई उनके यहाँ बहुत लोग आने वाले हैं तो अपन भी थोड़ी सी उनको मदद कर दें, इसलिए कि औरतें बहुत काम में होंगी। तो मेरी घरवाली ने खुद कहा कि दही मंगवा दो 10 लीटर, दूध मंगवा दो सॉरी। मैंने कहा दूध दही बनाना है और आप दूध मंगवा रही हैं? कहा नहीं, उसी दूध को हम फाड़ेंगे, उसी दूध को बिगाड़ेंगे और बिगड़े हुए दूध का नाम दही। अरे बिगड़ गया ना, बिगड़ने से तो उसमें जम्स। अब साइंस क्या कहती है कि वो बैक्टीरिया बदन के लिए जरूरी है, जरूरी अच्छे हैं, मुफीद हैं, और वैसे कुछ बैक्टीरिया को निकालने पड़ते हैं जैसे जंगल के अंदर कुछ दरख्त रहने देने पड़ते। मैं ये लंबी बात में न जाते हुए समझाना चाहता हूं कि इंसान दिखने में एक इंसान है लेकिन होल वर्ल्ड के सैंपल्स अल्लाह ताला ने उसमें पैदा फरमा दिए, सब के सब उसके अंदर सैंपल है। जाहिरी बात है कि जब एक इंसान पूरी दुनिया अपने साथ लेकर चल रहा है तो यह कितना कीमती होगा, कितना कीमती होगा। अब समझो दुनिया में हर चीज अल्लाह की इबादत करती है, हर चीज अल्लाह की इबादत करती है। और यह हम नहीं कह रहे, कुरान करीम कह रहा है कुल्लुन कद अलीम सलातहु व तस्बीहा। एक जगह फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिहि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कैसे? बुजुर्गों ने लिखा बहता हुआ पानी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, कबूतर और परिंदे जो चहचहाते हैं ये अल्लाह की तस्बीह है, दरख्त के पत्ते हिलते हैं ये अल्लाह की तस्बीह है, और गाय और भैंस हमेशा रुकू की शक्ल में है, रुकू की शक्ल में। सांप और बिच्छू जमीन पर रेंगने वाले जानवर हमेशा सजदे की शक्ल में है, पहाड़ कायदे की शक्ल में है और दरख्त कयाम की शक्ल में है। ये सब उनकी इबादतें हैं लेकिन अलग 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 अलग। पहाड़ रुकू नहीं कर सकते, दरख्त सजदा नहीं कर सकते, भैंस और गाय कयाम नहीं कर सकते सबको, लेकिन इंसान उसकी इबादत में सब कुछ है। क्यों उसकी इबादत में सब कुछ है? इसलिए कि इंसान सब कुछ अपने साथ लेकर चल रहा है, दरख्त भी उसके अंदर और पहाड़ भी उसके अंदर और जानवर भी उसके अंदर और वगैरह भी उसके अंदर और वगैरह भी उसके अंदर। तो उसको नमाज ऐसी दी गई कि सारी मखलूकात की इबादतों का मजमुआ उसके अंदर है। समझो इंसान कितना कीमती है, कितना कीमती है। उसने समझ, असल में इंसान ने अपने आप को मेकिंग मनी का मशीन समझ रखा है और हमारे कल्चर ने हमको ऐसा ही बना लिया है, बाप पैसे बनाओ, बस पैसे बनाओ। घर की औरतों की नजर में मर्दों की हैसियत, बच्चों की नजर में भी मर्दों की हैसियत के माय डैडी हैज नो वर्क ओनली मेकिंग मनी, इसलिए के रोजाना डिमांड आज शूज तो कल शर्ट तो परसू पायजामा और तरसू टोपी तो फिर स्पेक्टिकल्स और फिर प्रैक्टिकल अल्लाह जाने क्या क्या। बस इसी में बाप बेचारा कमाते रहते, छापता रहे पैसे, छापता रहे छापता रहे और इधर वो स्पेंड होते रहते। ये है इंसान, क्या वैल्यू हमने अपने आप की समझी। किसी ने कहा है कि जवानी कमाते कमाते गुजार दो और फिर बुढ़ापे इलाज में ये पैसे बर्बाद कर दो। बुढ़ापे के लिए आदमी कमाता कमाता रहता है और फिर जब बुढ़ापा आया तो उसी में गंवाता रहे, ये गलत तरीका है। समझो हम कितने कीमती हैं, समझो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह फरमाया है, अल्लामा इकबाल तो अल्लामा इकबाल थे, वो कहते थे इंसान के जेब में अगर बड़ी नोट हो, बड़ी करेंसी, और उसको ये पता ही ना हो कि मेरे जेब में कितनी कीमती करेंसी है तो वो उसकी हिफाजत भी नहीं करता और अपने आप को भी केयरफुल नहीं रखता। अगर आपके जेब में एटीएम हो तो एटीएम कार्ड, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से वही बोलते होंगे जो बैंक में से पैसे निकालने का आता है मशीन में से, तो एटीएम कार्ड हो और आपके पास क्रेडिट काफी पैसों की हो तो आप कितने भी अपनों के अंदर हो तो भी ऐसे छुपा छुपा के रखें, और अगर गिर जाने का खतरा हो तो बहुत से लोग तो ऐसे रखें, तो नहीं गिर जाएगा तो क्या होगा, केयरफुल पासवर्ड मार देते हैं और वो पासवर्ड अपनी बीवी को भी नहीं बताते और बताना भी नहीं चाहिए जी, बताना भी नहीं चाहिए। मैंने बताया अपने दोस्तों को कि एक औरत ने इंग्लैंड में अपने शौहर के तमाम एटीएम कार्ड खर्च करके उसको कंगाल बना दिया कि तू कलंदर शाह बावा अपने आप को समझता था, अब मलंग शाह बावा बन जा, साफ बर्बाद कर दिया। लुकमान हकीम बहुत पहले नसीहतें करके गए थे, बहुत पहले 100 नसीहतें लुकमान हकीम ने की थी, और लुकमान हकीम की अकलमंदी की गवाही खुद कुरान ने दी है कि वलकद आतेना लुकमान अलहिकमत, उन्होंने एक नसीहत ये भी फरमाई थी कि अपनी बीवी को अपने बच्चों को कभी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी मत बताओ, ये मत बताओ मेरे पास कितना है। उस उनके जमाने में ये हाल था, तो अब के जमाने में तो बीवी पहले नंबर पर बीवी है कि नहीं वो भी एक सवाल है। मर्दों की हैसियत समाज ने खत्म कर दी, पैसे बना बस, तू पैसे बना, तेरा कुछ काम नहीं। इसलिए मर्द भी बेचारा ऐसा ही बन गया है, कमाता फिरता है। और बहुत से मर्द तो मैंने ऐसा सुना और कुछ लोगों को देखा कि वो ओवर टाइम तलाश करते फिरते, काम कर बस, काम काम चाहिए, ईद के दिन भी काम, जुमा के दिन भी काम, और उसको कुछ बेचारे इसलिए कि डिमांड इतनी है घर में से, डिमांड इतनी है, क्या करेगा। मेरे भाइयों, हम इसलिए दुनिया में नहीं आए हैं, कमाओ कोई मना नहीं करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कितना कीमती बनाया है वो समझाना चाह रहा हूं। मेरी बात यहां से चली थी, चार चीजों की कसमें खाई अल्लाह ने। अल्लाह पाक फालतू कसम खाता है क्या? उसने तो हमें ना बोला है कि मेरे नाम की बिला वजह कसमें मत खाओ, अपने इंडिया पाकिस्तान के लोगों को आदत है, और जो जितना ज्यादा झूठ बोलता है ना उतनी कसमें खाता है, ये भी बताऊं। बल्कि हमारे एक उस्ताद तो फरमाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह कि आजकल आदमी इंशाअल्लाह बोले तो समझ देगा कि वो काम नहीं करेगा, अल्लाह के नाम को वो मिसयूज करता है। इंशाअल्लाह बोला समझो कि नीयत में पत्थरे हैं, और काम पक्का करना है तो इंशाअल्लाह बोलता ही नहीं, हालांकि उल्टा है कि पक्का हो तो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नाम का गलत इस्तेमाल मत करो, अल्लाह के नाम की ऐसी गलत गलत कस्में मत खाओ। बल्कि फरमाया कि अगर कभी बाई चांस बाई मिस्टेक अल्लाह के नाम की कसम खा ली किसी से बात न करने के लिए या कोई नेकी का काम न करने के लिए, कसम तोड़ दो, कसम तोड़ दो और वो काम करो। अरे मैंने अल्लाह की कसम का, कोई बात नहीं, सवाब ये है कसम तोड़ो। बहुत सी औरतें बहुत से मर्द भी कहते हैं मैं उससे बात नहीं करता या बात नहीं करती, क्यों? कसम खाली है इसलिए मैं तो उनके शादी में जाऊंगी नहीं। अरे नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कसम तोड़ दो, कफारा अदा कर दो। खुदा का नाम जोड़ पैदा करने के लिए आया है, खुदा का नाम तोड़ पैदा करने के लिए नहीं आया। तो अल्लाह ने ये कसमें खाकर क्या बयान फरमाया कि हमने इंसान को मादी एतबार से बहुत खूबसूरत बनाया, सबसे ज्यादा खूबसूरत मखलूक अगर दुनिया में कोई है तो वो इंसान। कितनी खूबसूरत, समझाऊं? हारून रशीद एक मरतबा मूड में थे, ये बड़े लोग तो मूड में होते हैं ना, और कभी मूडलेस भी होते हैं, बड़ों के मूड भी अजीबोगरीब किस्म के होते हैं। हारून रशीद मूड में थे, उनकी बीवी का नाम जुबैदा था, नाम जानते हो तो, उनके नाम से एक नहर भी है अरफात मुजदलिफा वगैरह के रास्ते पर, नहर जुबैदा। उस वक्त उन्होंने वो खुदवाई थी, उस जमाने में कितना सवाब मिलता होगा। वो अपनी बीवी को लेकर टेरेस में बैठे हुए थे रात के टाइम पर, रात के टाइम पर बैठ सकते हैं बीवी को लेकर टेरेस पर, दिन में नहीं। और फिर सब आजकल तो दिस इज माई वाइफ एंड शी इज माई लाइफ, वाह भाई वाह, इंट्रोडक्शन भी पार्टियों में, दिस इज क्या तेरी वाइफ, तू तेरे पास रखना भाई, लोगों को क्यों बता रहा है, लोगों को क्यों बता रहा है, गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात। बल्कि आपको मैं दलील दूं, ये सिर्फ हंसते हंसाने की बात नहीं, इस्लाम ने औरत को इतना छुपाया, एकदम एकदम सिंपल दलील, इतना छुपाया इतना छुपाया कि फातिमतु जहरा, आयशा, खदीजा रदी अल्लाह अन्हुन्न एक का भी नाम नहीं लिया। चैलेंज है कुरान में कहीं भी ले आओ, जबकि कितनी अजीम औरतें, अपनी माएं, तो मां का नाम तो आना चाहिए, माओं का नाम भी नहीं दिया। بلکہ اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سورہ یوسف میں پورا واقعہ یوسف اور زلیخا کا ہے. زلیخا کا ایک دفعہ بھی نام نہیں ہے, ایک دفعہ بھی نہیں, صرف ایک عورت کا نام لیا ہے مریم کا, اور وہ بھی اس لیے کہ یہ بتلانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم سے پیدا ہوئے, اللہ نے ان کو اپنے پیٹ سے پیدا نہیں کیا نعوذ باللہ, اس لیے کہ لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو بار بار قرآن نے بولا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ عیسیٰ میرے بیٹے نہیں, وہ مریم کے بیٹے ہیں. وہ یہ بات کو سمجھانے کے لیے, باقی نہیں لیا نا. اس لیے ہمارے بڑے تو فرماتے ہیں کہ جب اپنی بچیوں کی یا بہنوں کی شادیاں ہوں تو انویٹیشن کارڈ میں نام نہیں لکھنا چاہیے. عورت کا نام بھی سطر ہے, عورت کی آواز بھی سطر ہے, تو پھر اس کے کپڑے, اس کا انٹروڈکشن سطر. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ کبھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف مت کرو, اور بیویوں کو فرمایا گیا کہ کبھی اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہ کرے. کتنی حضور کی فلسفی تو دیکھو, کتنے دور کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ اپنی بیوی کے سامنے کسی مرد کی تعریف مت کرو, اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی بھی عورت کی تعریف نہ کرے, کبھی بھی نہیں. تو انسان ایسا معاملہ ہے. وہ بات کیا چل رہی تھی, ہارون رشید زبیدہ کو لے کر ٹیرس پر رات میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ رات سے بات نکلی. حضور بھی اپنی بیوی کو لے کر نکلتے تھے رات میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر. میں اس قسم کے مولویوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کو یہ کہیں گے نہیں ہمیشہ تسبیح گھماتے رہو, اس لیے کہ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تو میں کیوں کہوں. نہیں, نکلو, انجوائے کرو, لائف انجوائے کرو, لیکن ان دا باؤنڈری آف شریعت, تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, کہ اللہ کی حدود ہے. پاسپورٹ میں جتنی ویلیڈیٹی ویزا کی, امیگریشن کی لگی ہو بس اتنے دن, اس سے زیادہ نہیں. اس سے آگے کراس کیا تو امیگریشن آفیسر پکڑے گا, اور پھر وہ امیگریشن آفیسر دنیا کا سب سے خطرناک آفیسر ہوتا ہے. وہ ہنستے بھی نہیں ہیں, وہ ہنسے تو بارش برسے, ایسا معاملہ ہوتا ہے. ہم لوگ ترکیسر میں پڑھتے تھے تو ایک جناب تھے ہمارے یہاں فلاح دارین میں کام کرتے, تو سیکرٹری تھے وہ, مطبخ میں بیٹھتے تھے, وہ ایسا ہمیشہ رہتے تھے. ہمارے طلباء میں مشہور تھا ہاں کہ اگر یہ جس دن ہنس دیں گے اس دن بارش کا ہونا یقینی. تو وہ امیگریشن آفیسر تو بالکل ہنستا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ میرے قاعدے ہیں, اس سے آگے نہیں جانے کا. حضور حضرت عائشہ کو لے کر رات میں نکلتے تھے, صرف نکلتے ہی نہیں تھے بلکہ دوڑ میں مسابقت بھی کرتے تھے کہ عائشہ تم دوڑو, میں بھی دوڑتا ہوں, کون آگے بڑھ جاتا ہے. حضرت عائشہ مزے لے لے کر وہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیشہ حضور آگے بڑھ جاتے تھے کمپٹیشن میں, میں پیچھے رہتی تھی. لیکن پھر حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ جب حضور کی عمر اپ ٹو 60 ہوئی اور تھوڑا بدن بڑھ گیا, تھوڑا بدن آپ کا بڑھ گیا, کمزوری آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک مرتبہ میں آگے بڑھ گئی اور حضور پیچھے رہ گئے. تو حضور نے ہنستے ہنستے فرمایا کہ ایکول ہو گئے, کوئی تو جیتی ہے تو ایسا مت سمجھنا کہ آج تو آگے بڑھ گئی, میں تجھ سے کئی دفعہ آگے بڑھا ہوں. تل کبھی تل کا عید کا موقع تھا, عید کا. میں میرے خاص طور پر نوجوان بھائیوں کو اسلام سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسا مت سمجھو کہ مولوی لوگ بس ایک ہی بات کرتے ہیں, مسجد میں آ جاؤ, میں ہم آپ کو گراؤنڈ میں بھی لے جاتے ہیں. میں آپ کو سب سمجھا رہا ہوں نا, گراؤنڈ میں بھی لے جاتے ہیں. کہ عید کا موقع تھا, مدینہ منورہ میں کچھ حبشی لوگ تیر اندازی کر رہے تھے کھیلنے کے لیے اس زمانے کی. حضور نے حضرت عائشہ کو بلایا کہ ادھر آ, وہ ونڈو کے پاس لے جا کر کھڑے رہے اور عائشہ سے فرمایا کہ ادھر تیرا چہرہ رکھ دے اور دیکھ وہ لوگ کیسے کھیلتے ہیں. حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی, اور حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہے کتنی پیاری بات فرماتی کہ میں تھک گئی تو میں نے اپنا چہرہ ہٹایا, ورنہ حضور نے نہیں کہا کہ بہت ہو گیا, کھبا دکھی ریلا چاہے ذرا تو ہٹاڑ, کہ کندھے درد کر رہے ہیں اب تو ہٹ جا. نہیں نہیں نہیں, حضور کتنا پیار کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. تو اسلام نے ہماری نفسیات کا, سائیکالوجی کا, ہماری جنسی ضرورتوں کا, اور معاف کیجئے ہمارے سیکس کے تقاضوں کا بھی پورا پورا خیال کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا, لیکن ساری چیزیں شریعت کی باؤنڈری میں. انجوائے کرو لائف, بلکہ گھر میں جاؤ تو ہنس کے. یہ تو معاملہ الٹا ہے, پارٹی میں ہو ہائے ہلو گڈ مارننگ نے سب نے, گھر میں گئے تو ایسا ایسا کر کے کیا کھانا لاؤ, یہ کوئی بات ہے یار, یہ دادا گیری کس قسم کی, کھانا لاؤ. ہاں और ये कम हो गया ने वो ज्यादा हो गया, जुल्म है औरतों पर, ये पता नहीं, ये एशियन नेचर अजीब है। और नहीं इंडिया पाकिस्तान वाला तो एवं समझे कि जाने पार्लियामेंट में बेहवानू नहीं मलतू एटले बद्दी दादागिरी बजरा ऊपर कल लखवानी, गलत बात है ये। ये औरतों का एहसान है कि वो बर्दाश्त करती है, वरना मामला गड़बड़ हो जाए। वो बिचारी, एक वाकया सुनाओ, एक साहब इंटरव्यू ले रहे थे, ध्यान से सुनना, उनके यहाँ कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट था, जरा पानी भी पिलाएंगे, अपॉइंटमेंट था कुछ लोगों का जॉब के लिए, तो बारी बारी सबको बुलाते थे, एक की बारी आई तो उन्होंने यूं कहा कि देखो मेरे यहां 24 घंटे काम करना पड़ेगा ऑन कॉल, क्या बोलते हैं उसको, ऑन कॉल, ये कॉल अरबी से चुराया है, हमारे हजरत उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा शिफाए कामिला नसीब फरमाए, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी दामत बरकातहुम, उन्होंने कितने अल्फाज ऐसे जमा फरमाए हैं कि जो गुजराती में इस्तेमाल होते हैं लेकिन असल वो अरबी है। इससे वो समझाना चाहते हैं कि ये कल्चर हमारा असल अरब से आया है, हमने अपने आप को बदल दिया। उसमें से एक लफ्ज़ कॉल भी है कि ज़रा कॉल करना, ये कुरान करीम का लफ्ज़ है, इन्नहु लकौल रसूल इन करीम, चुरा लिया अंग्रेजी वालों ने और उसको कॉल बना दिया। तो ऑन कॉल हमारे यहाँ 24 घंटे काम करना पड़ेगा, 365 दिन का खाना नहीं मिलेगा, सब खा लेंगे, सब स्टाफ खा लेगा, बचेगा तो खाने का, नहीं तो नहीं मिलेगा का छुट्टी, का एक दिन की छुट्टी नहीं, का ऑन दी ओकेजन्स फेस्टिवल्स, तो का ओकेजन और फेस्टिवल पर तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कहा कि लेकिन फेस्टिवल पर कपड़े वपड़े का नहीं, नहीं सब स्टाफ पहन ले फिर फुर्सत मिले तो बात लेने का, कहा ऐसी नौकरी हम नहीं करते, दुनिया में ये भी थोड़ी कोई नौकरी हो, ऐसी कोई मुलाजमत होती है क्या कि 365 दिन और 24 घंटे ऑन कॉल। वो जो बॉस था ना वो होशियार था, उसने कहा दुनिया में ऐसा काम करने वाले एक नहीं हजारों लोग हैं, कहा नहीं 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 कौन मिलेगा, कहा हमारे घर की औरतें ऐसा ही तो काम करती हैं, ईद के दिन औरत का काम घट जाता है या बढ़ जाता है, अपन नए नवेले कपड़े पहनकर ईदगाह में गए और आके शीर कुर्मा पी रहे, बिचारी ने अब तक कपड़े नहीं बदले, अब तक नहीं बदले, और ऑन कॉल, ऑन कॉल रात में 2 बजे भी, बाजों को तो चाय पीनी होती है तो दादागिरी और तर चा बना, और फिर बाहर निकल के कहीं मैं आपने कहीं दबाता वबाता नहीं मिले, रात ना 2 वागे भी कहे एटले इन्हें उभूज रहू पड़े, हाजर ज रहू एम के जाने, ये गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, मैंने मेरे बड़ों से सुना है कि वो जब उनकी औरतें थकी थकाई सो जाती थी तो तहज्जुद में उठकर अपने हाथ से चाय बनाते थे, कोई गलत बात थोड़ी है। हमारे आका और मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सब्जी भी साफ करते थे, हाँ कपड़ों की तह भी लगाते थे, बकरियों को साफ भी करते थे। साहबा ने वाकयात लिखे हैं, एक साहबी फरमाते हैं कि मेरे यहाँ छोटा भाई पैदा हुआ, मेरी अम्मी को डिलीवरी हुई, छोटा भाई पैदा हुआ, मैं गोद में लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नाम रखवाने के लिए और तहनीक करवाने के लिए पहुंचा तो मैंने देखा कि हुजूर अपनी ऊँटनी के अंदर से जुएं साफ कर रहे थे। हुजूर कितने बड़े सरदार, हुजूर तो खाली बोलते तो सब सहाबा खिदमत के लिए हाजिर हो जाते। मेरे भाइयों, खाली तहज्जुदें पढ़ लेना ईमान नहीं है, मुआशरा हुकूकुल इबाद, अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ। अफसोस की बात यह है कि अब तक तो माँ बाप शिकायत करते थे औलाद की, लेकिन अब तो मुझ जैसे छोटे आदमी को तजर्बा है कि हजारों औलाद अपने माँ बाप की शिकायत करती है कि मौलाना सताने की हद कर दी माँ बाप ने, माशरा बिगड़ गया, बिगड़ गया। तो वो हारून रशीद जुबैदा के साथ बैठे हुए थे, मूड में थे, तो हारून रशीद ने जुबैदा से अजीब बात कह दी, अगर तू 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक। जुबैदा परेशान हो गई कि बाप रे बाप, मैं इतनी खूबसूरत तो हूं नहीं, 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत अगर तू हो तो ठीक, नहीं है तो तुझे तलाक। जब गाड़ी फंसती है तो मौलवी ही का सहारा लेना पड़ता है, भले कितना भी बोलो कि मौलवी आवा ने तेवा ने फलाना ने ढिकना, लेकिन जहां गाड़ी अटकती है तो अच्छे अच्छों को लेना ही पड़ता है सहारा, बल्कि गैर मुस्लिमों को भी फूंक मरवाने के लिए मस्जिद के दरवाजों में खड़ा रहना पड़ता है। हाँ, तो सुबह हुई तो जुबैदा तो परेशान थी कि अगर तलाक हो गई तो बादशाह सलामत के निकाह से गई। उस जमाने में बहुत बड़े मुफ्ती थे, उनकी खिदमत में हाजिर हुई जुबैदा कि मेरे शोहर ने ऐसा कहा है कि अगर तू 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक। कहा बिल्कुल फिक्र की बात नहीं, 100% तुम 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। कहा बादशाह सलामत मैं तो अब लथड़ गई, खटारा बन गई, अब तो मेरी उम्र हो गई, मैं आईने में अपने आप को देखती हूं तो ऐसा नहीं लगता कि मैं चांद क्या 14वीं रात का, मैं बिल्कुल ऐसी हो गई हूं। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो, लिहाजा तुम्हें तलाक नहीं पड़ेगी। कहा कैसे हजरत? कहा मैं तुमको कुरान से दलील देता हूं। फिर यह आयत करीमा पढ़ी कि लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, कि हमने इंसान को दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया, और तमाम चीजों में तो चांद भी आ गया, तो चांद से भी ज्यादा तुम खूबसूरत हो, अब तुम्हें क्या फिक्र है कि तुम तलाक, तुम उससे भी तो देखा अल्लाह पाक ने इंसान को कितना खूबसूरत पैदा किया। अब इतना सुनने के बाद तो आप समझते होंगे कि देखिए हमारी वैल्यू, अपन 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। अरे लेकिन आगे बयान फरमाया कि सुम्मा रददनाहु असफल साफिलीन, हमने उसको पैदा तो किया बहुत खूबसूरत लेकिन उसको हमने बहुत नीचे भी गिरा दिया अखलाक के एतबार से, वो एकदम नीचे चला जाता है, इतना नीचे चला जाता है अखलाक के एतबार से कि जानवरों को भी शर्म आती है कि क्या ऐसे भी धंधे होते हैं। लेकिन इंसान अगर अपनी कीमत हासिल करना चाहता है तो खुद कुरान करीम ने नुस्खा बतलाया इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, बस ये दो चीजें अगर हैं तो इंसान इज द वैल्यूएबल पर्सन, दुनिया का सबसे कीमती मखलूक इंसान। कौन सी दो चीजें? ईमान और अमल सालेह। ईमान किसका नाम है? रटने का, गुनगुनाने का, सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम? तो तोते भी कलमा तो पढ़ते हैं। एक साहब के यहां, बल्कि दो लोगों के यहां मैंने यहां देखा, दो लोगों के यहां कि उनके घर में पैरट कलमा भी पढ़ता है, अहलन भी बोलता है, सहलन मरहबा सब बोलता है, अल्लाह जाने क्या क्या बोलता है वो। और कहा भी गया कि इसके अंदर मेमोरी जो है उसका कार्ड वो इतने 1000 वर्ड्स को याद करता है, तो बोल लेने से थोड़ा चलता है नहीं, वो अंदर की हकीकत बन जाने का नाम है। अंदर की ये हकीकत जब बन जाती है तो आमाल से उसका इजहार होता है, तवाजु, तवाजु, इबादत, अब्दियत, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे के काम आना और अल्लाह के हुक्म पर मर मिटना, इसका नाम ईमान है। हमने ईमान को अल्फाज से मुताल्लिक समझ लिया। बात यह थी कि इंसान को अल्लाह ताला ने जाहिरी एतबार से भी बहुत खूबसूरत बनाया। और दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी वलकद करमना बनी आदम, और हमने इंसान को सलाहियतों के एतबार से, क्वालिफिकेशन के एतबार से भी सबसे ज्यादा मुकर्रम बनाया। इल्म भी उसका बहुत बुलंद, अरे उसकी रसाई इतनी इतनी, उसकी पहुंच इतनी इतनी कि जहां तक जिब्राइल की पहुंच भी नहीं हो पाती। जिब्राइल भी जहां नहीं पहुंचते वहां इंसान पहुंचता है। जिब्राइल को भी जब उसके सामने लाकर बिठाया गया तो दो जानू होकर बैठ गए, वो दो जानू होकर बैठ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये इंसान था। और कुरान ने इंसान की और एक हकीकत समझाई ना, इन्ना अरज़नल अमानत अलस्समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा लेकिन वहमलहल इंसान। ओ हो कि हमने वही का बोझ, हमारा मैसेज, हमारा मैसेज, हमारी तजल्ली, हमारी नूरानियत, ये देने के लिए आसमानों को ऑफर की। आसमानों ने एक्सक्यूज किया कि हम वही का बोझ नहीं उठा सकते। जमीनों ने ना बोला, पहाड़ों ने ना बोला, उनको डर लगा, लेकिन इंसान ने उसको बर्दाश्त कर लिया। इंसान ने बर्दाश्त कर लिया कैसे? आपको मालूम है सोना कैसे बनता है? सोना और चांदी कैसे बनती है मालूम है? सुनाऊं मैं आपको, ये सूरज निकलता है, जब सूरज निकलता है ना तो उसकी वेव्स और शुआएं ये समंदर पर, मिट्टी पर, जमीन पर जाती हैं, और डायरेक्ट उसकी शुआ को, डायरेक्ट उसके पीले कलर की शुआ को और उसकी वेव को जो मिट्टी का जर्रा कबूल कर लेता है, कैप्चर करता है, वो मिट्टी सोना बन जाती है, और उसकी सफेद वेव को मिट्टी का जो जर्रा कैप्चर कर लेता है वो चांदी बन जाती है। मिट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने ये ताकत पैदा फरमाई है। तो मिट्टी से बने हुए इंसान में ये ताकत है कि खुदाए ताला के यहां से जब जब नूर की शुआएं छूटती हैं, इंसान उसको कैप्चर कर लेता है, तो सोने चांदी से भी ज्यादा अपने आप को कीमती बना लेता है। और अगर नहीं करता, पड़ा रहता है, तो गंदा बन जाता है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा, फरमाया करते थे कि अंडा अगर पड़ा रहे तो गंदा बन जाता है, लेकिन यही अंडा अगर मुर्गी के नीचे बैठ जाए 21 दिन तक के लिए तो फिर उस अंडे में से बच्चे निकलते हैं। वैसे ही अगर इंसान ऐसे ही पड़ा रहे तो गंदा बन जाता है, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ जाए तो फिर उसके अंदर से लोगों की हयात निकलती है, लोगों की जिंदगी का जरिया बन जाता है वो। मेरे भाइयों, हम लोग बड़े कीमती लोग हैं, हमें मालूम नहीं है। वो अल्लामा इकबाल की बात कह रहा था ना, हमें नहीं मालूम कि हमारे जेब में कितना बड़ा कार्ड है और हम कितने कीमती लोग हैं। हमने अपनी हकीकत को और कीमत को समझा नहीं, इसलिए हमें कोई थोड़े पैसों में भी खरीद लेता है, शैतान भी खरीद लेता है और नफ्स भी खरीद लेता है, और हम अपने आप को बेच भी देते हैं, जबकि हमारी कीमत इतनी बड़ी। अल्लामा इब्ने कय्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कितनी चौंका देने वाली और हिला देने वाली बात लिखी, हमारा खरीदार तो अल्लाह है, अल्लाह हमें खरीद रहा है। और अल्लाह पाक कोई ऐसी वैसी चीज को खरीदेगा? आप बोलोगे कि हजरत ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मैं आयत सुनाऊं आपको, इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह ताला ने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिया। अल्लाह खरीद रहा है, जान दे दे तेरी थोड़ी देर नमाज में, अल्लाह के रास्ते में, जमात में, मदरसों में थोड़ी तेरी जान दे दे, तेरा माल थोड़ा लगा, और हम उसके बदले में तुझको बि अन्न लहुमुल जन्नत, कीमत क्या? जन्नत। बुजुर्गों ने लिखा कि खरीदी तो वो चीज जाती है जो अपनी मिल्कत की ना हो, सामने वाले की हो। मेरी पेन मैंने तुमको इस्तेमाल के लिए दी हो और मैं वापस मांगू तो ऐसा बोलूंगा कि मुझे जरा खरीदना है, मैं बोलूंगा मुझे मेरी पेन वापस दे दो। तो हमारी जान और माल तो अल्लाह का है, फिर भी अल्लाह बोल रहा है कि मैं तुमसे खरीद रहा हूं। ये भी रब ताला की मेहरबानी, ये उसकी मेहरबानी कि मैं तुझसे ऐसे मुफ्त में नहीं मांग रहा हूं, जबकि तेरी जानो माल तो मेरा ही है, लेकिन मैं तुझसे मांग रहा हूं। फिक्र मत कर, मांग नहीं रहा हूं, खरीद रहा हूं, मैं उसका बदला भी तुझको दूंगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। इंसान बड़ा कीमती है और उसकी ये पूरी हस्ती अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई अमानत है। उसकी आंख, कान, नाक, ये उसकी अपनी ओन प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई है। और देखो, ये मैं मुसल्ले में बैठा हूं, मैंने अभी अपने दोस्तों से पूछा कि यहां सब रेंट के मकान है का? जी हां। तो रेंट का मकान अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं या मालिक से पूछना पड़ता है? बोलो, जवाब दो। मालिक से पूछना पड़ता है ना, वरना अपना जाती मकान हो तो आदमी उसको तोड़ फोड़ भी कर सकता है। लेकिन अगर रेंट का मकान हो और आप बोलो मैं तो ये वॉल तोड़ डालूं और उसको एक कमरा बना दूं, तो नहीं, पूछना पड़ता है। तो जब ये हमारा रेंट का है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है इस्तेमाल करने के लिए, हम इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो चाहे सुन लो, जो चाहे बोल लो, जो चाहे देख लो, नहीं, ये प्रॉपर्टी अल्लाह की है। वो बोलेगा वहीं देखा जाएगा, वो बोलेगा वहीं सुना जाएगा। और अगर मिसयूज़ किया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी और फिर इंसान के लिए तकलीफ का सामान होगा। हमने अपने जिस्म को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ लिया है, इसलिए हम अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे अंदर से वो ताकत निकल गई, हमारे अंदर से अपनी वो वैल्यू निकल गई, हमने अपने जिस्म को अल्लाह की मर्जी के ताबे नहीं किया। अगर हमने अल्लाह की मर्जी के ताबे किया है तो फिर अल्लाह पाक इस जिस्म के अंदर ऐसे अनवार और बरकात पैदा फरमाते हैं कि मरने के बाद हमको जन्नत का मालिक बना देगा अल्लाह पाक। हम तो वैसे बैठे बैठे समझ लेते हैं कि जन्नत हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, गोया मकान नंबर फुलां हमारे अब्बा के नाम पर दस्तावेज बन गया हो। नहीं, قرآن کریم نے فرمایا ہے حالات سے گزرنا پڑے گا، امتحان دینے پڑیں گے۔ میرے بزرگوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میرا اصل پیغام سب سے پہلا یہ ہے، ہم اپنی ویلیو کو سمجھیں، ہم اپنے آپ کو صرف میکنگ منی کا مشین نہ سمجھیں کہ گاڑی چلتے چلتے انجن تھک جاتا ہے تو اس کو بھی آدمی ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو ہم کماتے کماتے تھک جاتے ہیں، رات میں آ کے سو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ہم صرف اس کے لیے تھوڑے آئے ہیں، ہم اپنی ویلیو سمجھیں۔ دوسری بات جو مجھے خاص بتلانی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اللہ کی امانت سمجھیں، ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو اللہ کی امانت سمجھیں۔ زمانہ خطرناک موڑ کی طرف جا رہا ہے، اور آپ حضرات تو زیادہ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کے برین واش کرنے کے لیے اٹیک ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہنوں سے ایمان کی شعاؤں اور انوار کو ختم کرنے کے لیے کس کس قسم کے دھندے ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ بات لوٹ پھر کر وہی آتی ہے کہ ہم کمانے میں اتنے پڑ گئے کہ ہمیں اپنے بچوں کی طرف دیکھنے کی اور سمجھنے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ کل ایک صاحب کے یہاں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوا، کل کیا بلکہ آج ہی، وہ رات ہو گئی اس لیے میں کل کی بات کر رہا ہوں، یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے اعتبار سے میں کل بول گیا، ورنہ وہ اجتماع کے آخری مجلس سے پہلے ایک صاحب کے یہاں چائے پینے کے لیے جانا ہوا، تو وہاں ہمارے اور ایک ساتھی تھے، وہ ذرا کچھ انٹرنیٹ چیک کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے بڑی اچھی بات بولی، مجھے پسند آئی، وہ جو مکان کے مالک تھے انہوں نے، کہ کہا کچھ لوگ اپنی دادی کے پاس خبر پوچھنے گئے تھے، کچھ پوتے گرانڈ چلڈرن اپنی دادی کے پاس خبر پوچھنے گئے تھے، چار پانچ پوترا ہے تو دادی پائے گیا، تو ہر پوتا پھر وہ واٹس ایپ چیک کرنے لگا، تو دادی نے بولا خبر پوچھو آویلا چھو کیا پتا تمہارا دھندا لینے آویلا چھو، یہی سب چل رہا ہے، ذرا کوئی بیٹھا نہیں یہ چیک کر رہا ہے، باپ الگ لے کے بیٹھا ہے، ماں الگ لے کے بیٹھی ہے، کوئی الگ لے کے بیٹھا ہے۔ ایک صاحب کا اسی کنٹری سے فون آیا تھا ایک دفعہ، یہاں سے ہی میں ہندوستان میں تھا، کہا مولانا میرے بچے میرے ساتھ بیٹھ کے بات بھی نہیں کرتے اور میری مانتے بھی نہیں ہیں، آپ ذرا ان کو سمجھائیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے بچے کا نمبر دو، جب تم گھر پر نہ ہو تو میں فون کروں گا۔ میں نے ان کے بچے کو فون کیا تو بچے نے مجھے ڈائریکٹ کہا کہ ہمارے ابا سے پوچھو کہ ان کے پاس ہمارے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم کتنا ہے، گھر پر آتے تو سب سے پہلے واٹس ایپ لے لیتے ہیں، لیپ ٹاپ لے لیتے ہیں اور سیٹلائٹ پر سیٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم بھی پھر سیٹ ہو جاتے ہیں، ہم بھی ہمارا کام کرتے ہیں، وہ ہمارا کام کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، گھر جاؤ ختم بات، پھر اپنے بچوں کو محبت دو، ان کو وقت دو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، ان کے ساتھ پیار محبت کرو۔ اگر پیار محبت گھر میں نہیں ملے گا تو باہر تلاش کرنے جائے گا یہ، ہاں گھر میں نہیں ملے، اس لیے کہ محبت فطری چیز ہے، بہت قیمتی بات بتلا رہا ہوں، محبت کا تقاضا انسان کے نیچر میں اور فطرت میں داخل ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو محبت نہیں دیں گے تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ یار مجھے شفقت کیوں نہیں مل رہی ہے، مجھے تو محبت چاہیے، کیوں نہیں مل رہی ہے، وہ پھر کوئی بھی اس کو ذرا سا بولے گا آئی لو یو تو اس کے رو میں بہہ جائے گا، پھر اس کے ساتھ ہو جائے گا کہ مجھ کو تو کوئی محبت مل رہی ہے نا کہیں سے۔ لیکن ماں باپ محبت اگر دے دیں، بھائی بہن اگر محبت دے دیں، تو پھر بولے گا مجھے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے تو میں فائیو سٹار ہوٹل میں کیوں جاؤں۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے تالی مار مار کر ہنس ہنس کر بیٹھتے اٹھتے ہیں، لیکن اولاد کے ساتھ دادا گیری دادا گیری، اللہ جانے اتلی دادا گیری گھر میں کرے اموک ماٹیڑا لوگ کہ اللہ ہی رحم فرمائے۔ بچوں کے ساتھ بھی کاٹنے دوڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مار کھائیں گے۔ اب اولاد پھر ایسا چاہتی ہے کہ ڈوہو نہیں آوے تو ہارو، یہ بڈھا نہیں آوے تو اچھا، یہ دیر، جب باپ ایسا بولے کہ میں فلاں دن نہیں ہوں تو وہ عید مناتے ہیں کہ جاوے تو اچھا، یہ ایک دن گیا ہے دو دن نہیں، نہیں نہیں ایسے بنو کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہوں تو اولاد کہے کہ ابو جلدی آنا، ہمیں آپ کے بغیر اچھا نہیں لگتا، ہمیں ہم آپ کو مس کر رہے ہیں۔ یہ خالی بولنے کے لیے نہیں ہے کہ جسٹ ٹو سے آئی مس یو، یہ تو تمہارے یہاں کا خالی بولنے کا کلچر ہے کہ آئی مس یو نہ آئی فلاں یو نہ آئی فلاں، بولنے کے لیے نہیں، اندر کی آواز ہونی چاہیے۔ بچوں کو پیار دو، محبت دو، ان کے ہاتھ میں انگلی ان کی پکڑ کر انہیں مسجد لاؤ، ان کو دین کے حلقوں میں لے جاؤ، بزرگوں سے ان کو ملاؤ، ان کو گود میں بٹھاؤ، یہ سب اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ حضور تو کتنی محبت کرتے تھے معلوم ہے آپ کو، سناؤں، حضور ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے ایسے ممبر پر، کیسی محبت، تو سنو کہ حضور خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، خطبہ چالو ہو گیا تھا، ایسے یوں دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان کی امی حضرت فاطمہ نے لال کلر کے کپڑے پہنا کر تیار کیا تھا جمعہ کے دن، سرما ورما لگا کر، दोनों ऐसे घुटने टिकते टिकते खेलते खेलते घुटनिया पड़ता है, जिन्हें अपने गुजराती में कहे ऐसे, वो आ रहे थे दोनों बच्चे ऐसे घुटने टिकते। हुजूर ने जब देखा तो हुजूर की मोहब्बत अंदर से जोश मारी। मालूम है आपको क्या हुआ, हुजूर मिंबर पर से उतर पड़े चालू खुतबे में, उधर तक गए, एक को इधर बिठाया एक को इधर बिठाया और दोनों को ऐसे कंधे पर सवार करा के खुतबा दिया हुजूर ने, और फरमाने लगे सदकल्लाहु तआला इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, कि अल्लाह ने सही बात कही है कि औलाद तो आजमाइश की चीज़ होती है, मैं भी कब्जा नहीं कर सका मेरी औलाद को देख कर, हुजूर ने यह फरमाया। और ऐसे ही एक वाकया आता है सही हदीसों में कि हुजूर एक मर्तबा नमाज पढ़ने खड़े हो गए तो आपकी एक नवासी आ गई आपके पड़ोस में, बच्चे आते हैं कभी कभी ऊपर भी सवार हो जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं आपको बना देते हैं, तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, आपकी नवासी तशरीफ ले आई छोटी सी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सवार कराया, और फिर जब रुकू सज्दे में जाना होता था तो पकड़कर उनको साइड पर रख देते थे। ये नहीं है कि इस्लाम मोहब्बत करने को मना करता है, हुजूर भी रोए हैं और नहीं रोने को कसावत कल्बिया करार दिया है कि दिल की सख्ती है अपनी औलाद के बारे में, अगर कोई तकलीफ हो और आदमी को रोना ना आए, बल्कि रोने से रोकने वालों को रोका गया है कि मत रोको इनको रो लेने दो, रोने को रहमत बयान फरमाया है। एक मर्तबा हुजूर मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, बीमारियों का तस्करा चल रहा था, हमारे जो भाई बीमार हों वो घबराए नहीं, हाथ पैरों में तकलीफ हो घबराए नहीं, हुजूर ने फरमाया कि मोमिन को कांटा भी चुभता है तो उसके लिए दर्जात की बुलंदी होती है, तो सर में दर्द करेगा तो कितने गुना माफ़ हो जाएंगे। तो एक साहब बैठे हुए थे मजलिस में, उन्होंने कहा कि कसम खुदा की मुझको तो आज तक बदन में कहीं भी दर्द ही नहीं हुआ, हमारे आपके जैसे होते तो क्या कहते, हाउ ग्रेट योर हेल्थ, क्या तुम्हारी तंदुरुस्ती। हुजूर ने फरमाया तू उठ तो भाई यहाँ से, उठ तू निकल तो मेरी मजलिस से निकल जा, तो क्या बोल रहा है निकल यहाँ से। तो सब लोग देखने लगे कि यार ये तो अच्छी बात कर रहा है कि मैं कभी भी, कहा नहीं ये मुनाफिक आदमी है, इसलिए कि अल्लाह ताला मोमिन के गुनाहों से उसको धोने के लिए उसके ऊपर बीमारियां आफतें मुसीबत लाता है ताकि पाक साफ हो जाए, और मुनाफिक की फाइल बनाता है अल्लाह, उसकी फाइल बनाता है कि इसको दुनिया में कुछ मत करो, इसको लाइफ बराबर गुजारने दो फिर उसको पकड़ लेंगे। तो मेरे भाइयों अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझो, अपनी कीमत को समझो, और अपने आप को मेकिंग मशीन मत समझो, अपने औलाद की तरबियत करो, खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन उनकी आखिरत के बारे में सोचो और उनके फ्यूचर के बारे में सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि ये औलाद हमारे हाथ से निकल जाए और फिर हम खून के आंसू बहाते रह जाएंगे। लेकिन उसके लिए बुनियादी ज़रूरत है, अल्लाह ताला बहुत जजाय खैर इनायत फरमाए। आप हजरात को बड़ी खुशी होती है कि जगह जगह मुसल्ले और मकतब और मदरसों का इंतज़ाम है, उसको और ज़्यादा तकवीत बख्शो, और सिर्फ वो दो घंटे डेढ़ घंटा जो बच्चा मदरसे में आता है उस पर इनफ नहीं होना चाहिए, बल्कि घरों में लेकर बैठो। और मैं आज की मजलिस में बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ आप हजरात को बात करता हूँ, ये वादा करके यहाँ से उठो कि रोज़ाना रात में सोने से पहले अपने बच्चों को नबियों के किस्से सुनाएंगे, अपने बच्चों को बुजुर्गों के वाकयात सुनाएंगे, अपने बुजुर्गों को अंबिया सिद्दीकीन सालिहीन इनकी सीरतें सुनाएंगे, उनके बाल कैसे थे उनके कपड़े कैसे थे सुनाएंगे। मुझे ताज्जुब हुआ अभी चंद दिनों पहले मैं अबू धाबी से फ्लाइट में सवार हुआ, मदीना मुनव्वरा से आ रहा था अबू धाबी, अबू धाबी से इत्तेहाद की फ्लाइट में बॉम्बे आ रहा था। अब फर्स्ट क्लास में बैठा था और मेरे पीछे उस तरफ की सीट पर एक लेडी बैठी थी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन जितने लोग सवार हो रहे थे ना सब उस औरत को देख रहे थे और सब एक दूसरे को बोल भी रहे थे, जो ही उसको देखा उसको, क्योंकि वो अब मिडल ईस्ट की फ्लाइट थी तो ज़्यादातर मुसलमान थे उसमें ज़्यादातर। तो मैंने मेरे साथ जो थे रफ़ीक सफ़र उनको पूछा गया यार ये सब आदमी उस औरत को क्यों देख रहे हैं, औरतें तो बहुत सी हैं। तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब तुमने कहीं खबर भी छे, मैंने नहीं है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, कहा ये करीना कपूर है। सुनो ना हंसने की बात नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा कि ये सब लोग इसको जानते पहचान, कहां इसको जानते हैं तभी तो वो सब बराबर देख रहे हैं, क्यों दूसरी किसी औरत को नहीं देखते। मैंने फौरन कहा कि अल्लाह ये कैसे लोग हैं कि उन्होंने इस औरत को कितना पहचान लिया, कितना पहचान लिया टीवी पर देख देख कर सीरियल पर, कि आज वो वहां बैठी हुई है, पूरी फ्लाइट चढ़ती जा रही थी उसको देखती जा रही थी। लेकिन अगर किसी को ये बतलाया जाए कि इस किस्म के बाल इस किस्म का चेहरा किसका था, तुम बोल सकते हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो मुसलमान बच्चा नहीं बता पाएगा। मोहब्बत ही नहीं है ना। देखा आपने कि गैरों को बराबर पहचाना। और फिर वो मेरे जो रफ़ी के सफ़र थे वो भी कह रहे थे कि सैफ अली खान के साथ उसका ये लफड़ा चल रहा है और अब उसकी शादी होने की तैयारी है, इतनी पूरी सीरत वो सुना रहे थे उसकी। मैंने कहा वाह भाई वाह। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन और एक वाकया पेश आया, सब साथ साथ में ही हो गया, कि मैं बड़ौदा था मेरे वतन में, तो मैं बाल कटवाने गया था बार्बर के पास। मैं बाल कटवा के उतरा, मैं पैसे पे कर रहा था, उतने में एक औरत ने अपना छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, उसको टेबल पर, इसलिए कि बच्चों को तो कुर्सी के ऊपर टेबल होता है फिर उस पर बिठाना पड़ता है ना ताकि, तो वो बच्चे ने बैठते के साथ कहा कि अंकल मेरे बाल आमिर खान जैसे काटना। मैंने सर पकड़ लिया, मुसलमान औरत थी मेरे महल्ले की, तो मैंने उस औरत को पूछा कि बहन अब तुम्हारा पोइरा ने आ बदी खबर कहाँ थी कि आमिर खान ना बाल आवाने तेवाते, के मोल साहब मैं रोज पेलू एम का जाने टीवी जो है नहीं एटले। तो मैंने वो औरत को कहा कि जरा तुम्हें माफ़ कर जो, मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को ये पूछो कि हमारे नबी के बाल कैसे थे। तो वो औरत रोने लगी, उसको अब एहसास हुआ, उसको एहसास। मैंने कहा चलो जाने दो बाल, कम अज़ कम इतना पूछो कि तुम्हारे नबी का नाम क्या था। कहा मौलाना नहीं बता सकता है। मैंने कहा अफसोस है तुम्हारी ज़िंदगी पर कि तुमने अपने घरों में चर्चे किसके करवाए, और अब इस औलाद से तुम नौजवान होने के बाद ये उम्मीद रखो कि ये औलाद हिदायत वाली बने, ये औलाद अल्लाह वाली बने, तो तावीज़ों से नहीं बनेगी, माफ़ करना इसको। उठे बहन तावीज़ के मारो पोइरो कंट्रोल में नदी ने बनाओ तावीज़ एम के जाने, तावीज़ होती बड़ी कंट्रोल में होती हो औलाद। जब कंट्रोल करने का था निकाल दिया, ने बोले अब तावीज़ एक तो कहा ये भी तावीज़ बनाई दो कि हवा में एम अले तो एम के जाने घर में हिदायत आवे। अरे भाई हिदायत अल्लाह की तरफ से हवाओं की लहरों में चलती है, दिलों के दरवाजे खोलो वो आएगी, वो आएगी। अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत चलती है, लेकिन हमें नहीं लेनी तो हमें नहीं लेनी। और फिर रोज़ी में बरकत, तो बोले तावीज़, तो मैं तो ये कहा करता हूँ कि अगर तावीज़ के ज़रिए रोज़ी में बरकत आने लगे ना तो तावीज़ बनाने वालों को तावीज़ की दुकान ही नहीं खोलनी पड़े। ये खुद दुकान इसलिए खोलते हैं कि उनकी रोज़ी पानी के धंधे वांधे आते हैं, इनके खुद की रोजी के मसाइल होते हैं, इसलिए वो दुकान इसकी खोलते हैं। कौन सी नहीं, 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 असल जिम्मेदार हमारे आपके अमाल हैं, कसम खुदा की जिम्मेदार हमारे आपके अमाल हैं। हमारे अमाल बिगड़ गए, बरकतें ख़त्म हो गई। और गुजराती में एक कहावत है, इसका मतलब होता है कि खजवाड़ी ने लोई कड़वानू एना जिम्मेदार आपड़े छे, यानी बैठे बैठे खुद खुजा रहे हैं, खुजा खुजा खुजाए, और कहा पता नहीं यार मेरी चमड़ी कैसी हो गई, खून निकल रहा है, तो निकलेगा ना तुम बैठे बैठे खुजा रहे हैं तो खुद ही मुसीबतें खड़ी करते हैं। तो पहले अपने आप का सर्वे करो, ये खास बात कर रहा हूं, दूसरों पर मत डालो, ये बहुत बड़ा शैतानी हथियार है कि कुछ हुआ तो बोले किसी ने कुछ करवा दिया होगा, किसी ने कुछ नहीं, नहीं नहीं, असल जिम्मेदार हम लोग हैं। हमारे घरों में पाकी का ख्याल करो, पाकी का ख्याल करो, गंदे कपड़े मत रहने दो। हाँ, और जितनी भी ऐसी गंदगी चीज़ें छोटे बच्चों की और छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चों की होती है उसे फेंक दो, रात में फेंक दो। इसलिए कि जिस घर में गंदगी होती है रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में नापाक पड़े रहने की आदत होती है फरिश्ते नहीं आते। अच्छा फरिश्ते नहीं आएंगे तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, नहीं आते। मैं आपको समझाऊँ ना, फरिश्ते जब नहीं होते तो फारसी में एक कहावत है कि खाने खाली रात देउमी गीरत, कि जो मकान खाली होता है उसमें शैतान बसेरा करता है। अब जब फरिश्ते नहीं होते तो कौन जगह बना लेंगे, जवाब दो, माशाल्लाह शैतान, शैतान जगह बना लेगा। शैतान आ जाएगा घरों में तो क्या करवाएगा, झगड़े। ये है मियां बीवी के झगड़ों की वजह। इब्ने माजा शरीफ की रिवायत में आया कि जो औरत अपने घर के मर्दों के सामने दुपट्टे के बगैर रहती है उस घर की रोजी की बरकत छीन ली जाती है। घर के मर्द महरम जिनके सामने बाल खुले रखने की भी इजाजत नहीं है, अपना बाप अपना शोहर, लेकिन नहीं घर में भी दोपट्टा। और अब तो औरतें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैली घैली घर में रहेंगी और पार्टी में जाना हो तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। लेकिन इसके जिम्मेदार हम मर्द लोग हैं कि हमारी चाहत के मुताबिक जब औरत खाना पका सकती है तो हमारी चाहत के मुताबिक वो घरों में दीनदार क्यों नहीं बन सकती। माफ़ करना मैं आई एम नॉट एग्री, मैं इस बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। बहुत क्या करे हजरत हमने समझा दिया, नहीं मानती आज की औरतें, तो तुमको कढ़ाई चिकन खाना हो तो फौरन मान लेती है वो, और तुमको कबाब खाने हो तो फौरन मान लेती है, ये क्यों नहीं मानती, तुम्हें मनवाना नहीं आता, तुमको भी अच्छा लगता है कि मैं भी बन सवर के जाऊं, वो भी मैं मेरा काम करूं, वो उसका काम करे। जिम्मेदार हम लोग हैं मेरे भाइयों, घरों का माहौल दुरुस्त करो और अपने बच्चों को मस्जिदों से जोड़ो, कुरान करीम की तिलावत की आदत डालो, रोजाना वादा करो कि रोजाना हमारे घरों में कम अज कम हर फर्द पाव पारा पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं कहता, ज्यादा पढ़ो तो इंशाल्लाह बहुत फायदे की बात है, लेकिन पाव पारा हर आदमी पड़ेगा, अपनी औरतों को भी अपने बच्चों को भी। उसके बगैर ब्रेकफास्ट टाइम नहीं मिलता, क्यों टाइम नहीं मिलता, व्हाट्सएप के लिए टाइम मिलता है, पाव पारा पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, सब टाइम है, करना न हो तो बहाने हजार हैं। नहीं करोगे तो फिर वही बात होगी, शैतान बसेरा करेगा, और शैतान नहुसत के सिवा तो कुछ देता नहीं है। अल्लाह ताला हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा फरमाए। मैं जहां से चला था वहां आ गया कि अल्लाह ने जब मादी एतबार से लकद खलक नल इंसान फी अहसनी तकवीम, और मानवी एतबार से वलकद करम ना बनी आदम का हमें मालिक बनाया है, तो हमें इन दोनों हकीकतों को समझना है कि मैं जाहिर के एतबार से भी बड़ा कीमती हूं और बातिन के एतबार से भी। अब अगर मैंने अपनी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया तो लोग मुझको रद्दी और गार्बिज में डाल देंगे, इसलिए हमें अपनी कीमत का एहसास करना चाहिए। हक ताला शानुहु हम सब के अंदर वो सेंस, फीलिंग्स, अपनी वैल्यू को समझने की ताकत, हिम्मत और तौफीक से नवाजे। अल्लाह ताला खूब आबाद फरमाए, और जितनी फिक्रें आप लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा फिक्रें करने की तौफीक नसीब फरमाए। रोज़ी जितनी मुकद्दर है मिलेगी, लेकिन कुरान करीम की एक आयत और मुझे याद आ रही है, उस पर भी ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिस्का। ये दोनों में जोड़ है, मुफस्सरीन ने फरमाया ये दोनों टुकड़ों में जोड़ है कि अपने घर के लोगों को नमाज का हुक्म करो, दीनदार बनाओ और करते रहो करते रहो। आगे फरमाए, हम तुमसे रोजी नहीं मांगते। पता क्या चला ये दोनों में जोड़ क्या है, कि रोजी के चक्कर में इतने मत पड़ जाओ कि घर वालों की दीनदारी से गफलत बरतने लगो कि मेरी औलाद कहाँ जा रही है दीन के एतबार से। ला नसअलुक रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, तुझे भी हम रोजी देते हैं तो उन्हें तो हम ही रोजी देंगे। कमाओ, कमाने से मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अपनी औलाद के फ्यूचर का दुनिया से ज्यादा आखिरत के बारे में ख्याल करो कि मेरी औलाद ऐसी बने कि जन्नत में हम सब साथ में रहें, अच्छी फैमिली बिल्डअप हो, वो कौम के लिए काम की औलाद बने। हक ताला शानहु हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ظلالا مضلين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم احفظ عيوننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، اللهم احفظها اللهم احفظها، اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.